चीज और देखा।
जिस डाली को पकड़ करके रखा उसके ऊपर वाली डाल में मधुमक्खियों का छत्ता है, छत्ता लगा रखा और उसमें मधु एक एक बूंद करके टपक रहा है उसके मुख के सामने से। यदि वो डाल हिल गई तो क्या होगा? गया ना, मधुमक्खियां एकदम सुट पड़ेंगी और आंखों में इधर ही काटती है और उनका भी बड़ा तीव्र होता है, मर जाएंगे। किंतु उसमें से जो निकल रहा चारों तरफ मौत ना, ऊपर मौत, नीचे मौत, साइड में दोनों मौत, सर्वत्र मृत्यु है। और उसी में से थोड़ा सा जो रस पक रहा है मधु का लाल लाल, और कितना मधु जब ऐसे गिरा तो उसने जीभ को बाहर कर दिया और एक बूंद उठ गया। आहा कठो कितना मधु, भूल गया जो ऊपर में बात नीचे में सर, इधर में ये गृहस्थ आश्रम का सुख है क्या, ये बच्चों का प्रेम, स्त्री का स्नेह, माया माता की ममता, सीता का प्रेम, ये सब चीज है मधु। एक एक बूंद धमकता है और भूल जाता, अभी मृत्यु कब हो जाने वाली है कोई चीज नहीं। इसे गृह हित्वा गृह अंधकूपम, इस गृह रूपी अंधकूप को छोड़ करके साधु संतों में जा करके भगवान का तू भजन कर, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। सुनते हैं उसकी आंख लाल हो गई, बेटा तुम हमको शिक्षा दे रहा है, तेरा बाप मैं कि मैं तेरा बाप ना तू मेरा बाप, काजे तुम मेरा बाप तो मैं तुम्हारा बेटा हो गया, तुम हमको ऐसी शिक्षा दे रहा है, हम गृहस्थों में पड़े हुए और तुम महात्मा बन गया अभी 5 वर्ष की उम्र में, शिक्षा दे रहा है। मारने के लिए तैयार हुआ, गुरु जी ने कहा प्रभु इसको छोड़ दीजिए, इसको मारिए, पता लगाओ कि इसकी बुद्धि दुर्बुद्धि क्यों हुई, भगवान का भजन करना दुर्बुद्धि है। उन्होंने पूछा कैसे इसकी दुर्बुद्धि आई, महाराज हमने नहीं कहा, ये ना जाने कैसे ये बालक ऐसे ही बोलता है, तो वहां पर कोई दूसरा नारोगाद आया था, ये कोई बाबा जी टीका लगाए हुए इस तरह का तिलक आया था कोई, असल नहीं तो कोई आया नहीं, तो किसने सिखाया, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बोलता है। अच्छा तो मानेगा नहीं, तेरा बाप मैं हूँ कि ईश्वर है, ईश्वर ने तुमको पैदा किया ना, मैंने तुमको लाड पार किया, स्कूल में दिया, मैंने तुमको खिलाया पिलाया, ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, जब ईश्वर है तो मैं ही, आजकल के आदमी कहते हैं मैं ही ईश्वर, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अरे अभी एक पतली सट्टी यदि निकल आई ना, यदि 2 बार हो गई तो हो गया, दांत बाहर हो जाएगा, ईश्वर निकल जाएगा, कहाँ ईश्वर कहाँ योगी, खबरदार ईश्वर मत बनो, ब्रह्म मत बनो, उनकी बात की जाए तो उनकी पूजा कैसे करो, झाड़ू हाथ में लेकर के उनके पीठ पर पूजा कर दो, घर के अंदर में मत आने देना, कोई चीज मत देना ऐसे संतों को जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म बना है। अभी दांत निकोल करके अभी जाते हैं वहां पर ऑफिस में, और बड़ा अफसर जब डांटता है ना तो उनकी निकल जाती है, और वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए जो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ उनको घर में आने मत देना, ऐसे साधु संत को जैसा है जितने विद्वान हो। अरे भगवान बोलने का कहने का, जिसे मैं भगवान हूँ, जो जन्म मृत्यु को भी अपने कंट्रोल में करने वाले, काल को भी कंट्रोल करने वाले, जो जिनका नाम लेने से काल भी दूर हो जाता है, मृत्यु दूर हो जाती है, वो प्रभु है भगवान। हम लोग भगवान नहीं है, भगवान के दास हैं, भगवान को भूल करके भी जीव है। श्रीनकस्तु ने कहा मैं ब्रह्म ब्रह्म नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं है बेकार की, कल से एकदम सुधार करो अपने को, नहीं तो तुमको देखूंगा। गुरु जी ने कहा कि प्रभु ये बच्चा छोड़ा छोटा था, हमारे पिताजी अभी शुक्राचार्य गए हैं बाहर, वो आ जाएंगे, ये सुधर जाएगा, आप कोई चिंता मत कीजिए। दूसरे दिन फिर 1 वर्ष के बाद में फिर उसको बुलाया, अब सुधर गया, अब मीठी मीठी बातें, आज पिताजी ने फिर उसको गोदी में लेकर के पूछा कि बेटा स्कूल में जो तुमने पढ़ा उसको जरा ठीक से बतलाओ तो, क्या पढ़ा? वो निर्धड़क किसी का डर नहीं, भय नहीं, निर्भय कहता है समणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तत्चक्षात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नव लक्षणा क्रियेत भगवत श्रद्धा तन्मन्य अधीतमुक्तमम। उस समय की संस्कृत की भाषा थी, वो लोग संस्कृत में बोलते थे, आज संस्कृत का तो हम स और अनुसार भी तर्क नहीं जानते, ये धीरे धीरे शिक्षाएं डेट लाइन में ये हो गई संस्कृत भाषा, इसीलिए हम लोग भी मर गए। यदि हमारा देश का उत्थान होगा तो संस्कृत के द्वारा ही उत्थान हो सकता है। विशेष करके पहाड़ों में इसका बहुत प्रचलन था, आज पहाड़ी लोग भी नहीं जानते। बहुत से पहाड़ी लोग हैं, उनके बाप ने उपनयन दे दिया था कि गायत्री का मंत्र करना, अब बेटे ने उनका कुल का उद्धार कर दिया, ये सोलह करके रख लिया, कहीं बांध दिया। जरूरत नहीं इसे बेकार की, ये सब चीजें यहाँ एक समय काम में आएगी। किस समय काम आएगी? जब संसार में अधिक दुख हुआ तो फांसी लगानी है ना, तो उस समय में ये काम ला सकती है। और सब काम का ये चीज है बेकार की जरूरी चीजें है। प्यार सब तो धरा पड़ा है, हम नहीं समझते। वैसे गुरु नहीं मिले जो उनको बतलाया, इसलिए इन चीजों को हम नहीं समझते हैं। किंतु में बहुत जीवन का सार इन चीजों में भरा पड़ा है, उपनयन में, ये संस्कारों में। मुंडन संस्कार होता था, लड़के का संस्कार होता था, नामकरण होता था, चूड़ाकरण होता था, उपवीत होता था, विवाह का संस्कार होता था। विवाह में भी कितने प्रकार के संस्कार होते थे, सब जाकर के अच्छे लड़के अच्छे लड़कियां पैदा होती थी। आज का बुरा संस्कार, एक लड़का पेट में है और मांस और दिन खाने लगे, वो लड़का कैसे अच्छा हो जाएगा? इसलिए ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए संस्कार होना चाहिए। श्रेणा कृष्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी मति खराब हो गई है, दुर्बुद्धि हो गई है। भगवान के भजन को कह रहा है दुर्बुद्धि, सच बोलता है तो कहते हैं कि तुम्हारी दुर्बुद्धि हो गया है घंटा, तो इसको दुर्बुद्धि कहते हैं। और खाने पीने में मस्त है, चोरी करता है, दाऊद देव मराई का चेला बन गया, कोई भी बात नहीं, ठीक है जाओ। उन्हें कहा इसको अभी मारो, आग में जलाया। उसकी बहन थी होलिका, उसकी सिद्धि थी आग में नहीं जलती थी, बस उसकी गोदी में बैठा करके आग जला दिया था। जो इसमें बैठ जा तो ये बेटा मर जाए, ऐसे नहीं मरता है, बीज देने से ये मरता नहीं, आग पानी में डुबाने से नहीं मरता है, हाथी के पैर कुचलने से ये नहीं होता है, किसी तरह से नहीं ये मरता है कि इसको लेकर के ऐसे ही जला दो। तो वो बेचारी गई, आग भड़कती हुई जल रही थी, और उसी में गई तो अपने मत एकदम जल करके खा तो भी प्रहलाद महाराज एक जैसे के पैसे निकाल आए। हरि नाम करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम।
ये सब कृष्ण नाम का प्रभाव था, जिससे किसी की विपत्ति उनको नहीं आती थी। आप लोग भी देखिएगा, कोई विपत्ति आए और ये मंत्र की लेज नहीं, उसके लिए मैं दाई रहूंगा, मैं फिर आऊंगा ना 6 महीने बाद। और आप ऐसा कीजिएगा, कोई विपत्ति आए, विपत्ति नहीं चली जाती हम कहते हैं, यदि तन मन से कहेंगे जरूर विपत्ति दूर हो जाएगी। विपत्ति की कोई यही नहीं है जैसे वो रह सके। प्रहलाद महाराज को मारने की चेष्टा नहीं मरे, तो कहता है कि भाई ये तो किसने सिखलाया था? इसके बाद में प्रहलाद महाराज जी कहा, आप तो इसको कहेंगे ये असतमति दुर्बुद्धि है, किंतु समझिए ऐसी जो बुद्धि है भगवान का भजन करने का, ये हमारे गुरु जो अभी शुक्राचार्य के पुत्र खंड और आमर्थ हैं, ऐसे लोगों के द्वारा नहीं। चबाए हुए को जो की बातें हैं, अर्थात कुत्ता क्या करता है, पेट भर गया तो अभी खा लिया तो जाकर के घास खाता है, और घास करके क्या करता है, ओ करके उगल देता है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसी खाता है, उसी को उसका अगले को उगली उगल दिया फिर खाता है। ये बहुत घृणा की बात है, तभी उपमा के लिए आपको समझा रहे हैं। एक कुत्ता है, उसको कहीं हड्डी मिल गई किसी, हड्डी को लेकर के क्या करता है, देखता है इधर ये कितने हैं कि नहीं, इधर दिखते हैं कि नहीं, इधर देखता है उधर देखता है, जो देखता है कि नहीं है, खुद के वे पूछ को नीचे अपने नीचे कर लिया, उसकी पूछ गोल होती है ऐसे ना, तो कुत्ते ना देखें उसको नीचे दिखा देता है, और ऐसे करके इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे लपक करके जाता है किसी गड्ढे में बैठ करके, बड़े आनंद के साथ में इधर उधर संदेह की दृष्टि से उसको चिबाता है। उस हड्डी में कुछ है, किंतु हड्डी में नोकीले जो उसके पोर्शन हैं, उसके दांतों में, उसके गालों में, उसके मुख में चुभ करके उससे रक्त पात होता है। वो समझता है कि ये रक्त जो आ रहा है ये हड्डी से आ रहा है, किंतु हड्डी से नहीं, अपना ही खून चूसता है, उसी को आनंद समझता है और देखता है कोई न दे। एक कुत्ते ने देखा और वहीं से भौंकना आरम्भ किया, 10-5 कुत्ते जुट गए और ये देखा जैसे अब तो मरण है, लेकर के भागा और 50 उसके पीछे पीछा किया और काटने लगे। जब काटने तो दुम दुबा करके उसको रख दिया और एक साइड में हो गया, और जिसने पकड़ा उसके पीछे अब थप लगा। यही संसार है, प्रधानमंत्री का पद क्या है, हड्डी है सुखी। राष्ट्रपति का पद क्या है, स्पीकर का पद क्या है, और मंत्रियों का पद क्या है। एक धोखेबाजी से एक को गिरा दिया, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, धोखे से गिरा दिया, और उसने धोखे उसको गिराया और सोचते हैं कि इस कुर्सी में ही रस है, उस कुर्सी में रस नहीं, संसार के किसी भी पद में रस नहीं। रस है भगवान के भजन करना, भगवान के चरणों में ही रस है और कहीं नहीं है। जब मारने की चेष्टा की नहीं मरा, और प्रहलाद महाराज जी ने कहा ऐसे गुरुओं के द्वारा नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत से कुल गुरु हैं, यदि है तो वो अच्छे है प्रणंद है। अधिकांश लोग जानते नहीं कि भगवान क्या है। जब मैं बचपन में, हमारे पिताजी ने कहा कि देखो हमारे कुल गुरु आए हैं, उनके पुत्र आए हैं, मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, तुम भी गुरु का शिष्य बन जाओ, उनके बेटे का, ये कुल धारा चलती रहेगी। हमने गुरु जी से पूछा, गुरु जी के लड़के से आप पान खाते हैं, कहाँ खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, हाँ बीड़ी भी पी लो, चाय पीते हैं तो चाय पी, तंबाकू खाते हैं तो वो भी कभी कभी ले लेता हूँ, कोई परहेज नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सुपारी पान खाते हैं तो वो भी ले लेता हूँ, किसी से मैं कहा नहीं, कोई परहेज नहीं, मिल गया खा लिया। अच्छा ये बतलाइए, ये गुरु कर्ण किस लिए किया जाता है, हम आप किस से बनेंगे, इसलिए इससे मेरा क्या लाभ है, आपको क्या लाभ। मैंने कहा राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, इसलिए गुरु करना चाहिए। मैंने कहा कि ये नहीं पूछता, ये बतलाइए सीधी सीधी बात हमको, आप कौन क्लास तक पढ़े हैं। तो मैं फोर क्लास से लूँ और मैंने तो एम ए पास किया है, तो आप फोर क्लास थे और हमको आप शिक्षा गए एम ए पास करने वाले थे, और कहते हैं कि तुम चेला बन जाओ मैं गुरु, तो ये पहले हमको बतला दीजिए, हमारा मन भर दीजिए, तब आपका मैं चेला बन जाऊंगा। ये आप हमको मन कर देंगे तो उसे मुझे क्या लाभ होगा। तो ये तो मैं नहीं जानता, किंतु ये जानता हूँ कि ये गुरु करना चाहिए। मैंने ये तो बात मैं नहीं सुनता, नहीं भाई इसे क्या लाभ होगा। जब नहीं बताया तो मैंने कहा ऐसे गुरु से मैं शिक्षा नहीं लेना चाहता, और दीक्षा जिस गुरु को पता ही नहीं है ये किस लिए दीक्षा ली जाती है, दीक्षा क्या बला है। और जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, चुरुस पीता है, चाय पीता है, गले में तुलसी की माला नहीं है, तिलक नहीं है। अच्छा आप गायत्री मंत्र जानते हैं, तो मेरे पिताजी ने बतलाया था इस समय में खुल गया। अच्छा तो उपनयन है, तो उपनयन पिताजी ने तो दिलवा दिया था, आजकल मैं व्यवहार नहीं करता क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छी बात है, तो ऐसे गुरु से हम चला बनेंगे, ये लोग कुल गुरु हैं, ये सब विचार करते हैं। एक बाजार में हांडी लेने जाओ, हांडी जानते हैं,
मिट्टी
घड़ा नहीं, मिट्टी का बर्तन। तो विशेष करके ये बर्तन लेना स्त्रियों का काम है, कभी कभी स्त्रियां कुछ अस्वस्थ हो जाए तो अपने पति को कहेंगे जरा बाजार से हांडी लेते आना, किंतु देखो तुमको हांडी लेने नहीं आती है, मैं बतला देती हूँ कि कैसे हांडी लेना। बाजार में जब जाना मट्टी के बर्तन को लेकर के एक लकड़ी लेना, उसको बजाना, यदि वो खन खन करती है तो मत लेना, कहे क्यों, खन खन करने वाली फटी होती है, और जो टन टन बोले ना बजाने से उसको लेना। ये तो भाई हमसे नहीं रहा, तुम भी अपनी ले आना, कल ले आना, परसों ले आना। तो जब दो पैसे की हानि हम लेते हैं और उसको बजा करके देखते हैं कि खन खन कर रही है कि खन खन कर रही है, और जिसको अपना जीवन का सब कुछ दे रहे हैं, ये हम नहीं विचार करेंगे ये गुरु हैं कि नहीं है, इनसे हमारा लाभ होगा कि नहीं, हमारे हृदय के समस्त मैल को दूर करके हमको कृष्ण का तत्व ज्ञान देकर के हमको वैकुंठ के रूप में पहुंचा देंगे, ऐसा ज्ञान उनको नहीं चाहिए, ये विचार नहीं करेंगे। ऐसे तैसे जिसके इस चरणों में अपना शिष्य झुका देंगे, ऐसा नहीं होगा, तब तो वो परमात्मा उनको मिलेगा, और नहीं तो ऐसे नहीं होगा। एक जगह में एक बारात आई, बारात घर में, लड़की के घर में, तो बुढ़िया ने क्या किया, एक बिल्ली का बच्चा बाहर से कहीं चले आकर के टोकरी के नीचे उसको रख दिया। घर वाले ने पूछा जैसे ऐसा क्यों कर रही है, तो ऐसी ही रीति चलती है हमारी, एक बिल्ली को रख दिया, ओम में कपी कपी रह गई, विवाह जब हो गया तब उसको छोड़ा। किस लिए, अरे कभी ऐसा हुआ होगा जब विवाह के दिन में एक बिल्ली का बच्चा इधर उधर बड़ा तंग कर रहा था, उसको दबा करके रख दिया जी एक जगह, अब वो रीति बन गई। इसी के घर में एक दिन एकादशी से बाई चांस कोई आदमी मर गया, अब 10 पुरुषों के बाद में कहते हमको एकादशी सहती नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करते। अरे भाई ये बड़ी बात है, विचार तो करो। तब तो तुमने विवाह करना बंद क्यों नहीं कर दिया? जब इसी दिन मर गए तो विवाह करना ही छोड़ दो। स्त्री पुरुष स्कूल में जो आए विवाह ही मत करो। नहीं नहीं विवाह तो करना है, कोई विचार करना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर में विचार है, लेकिन नहीं सुनेंगे। बताओ बिना पैसे का ये सब चीजें भागवत की और तत्व की दे रहा हूँ। देखिए कितने आदमी आप लोग, दस पांच आदमी बैठे, लोगों को आत्मिक लोगों को इसमें रस नहीं आएगा, किंतु कल्याण इसी में है। इसके बाद में आई तो काफी समय हो गया, इसे इसका आधा रह गया है प्रहलाद महाराज करके, और आगे बहुत ही सुंदर कल इसको समाप्त करके अब दशम स्कंध की लीला खूब सुंदर मधुर आप लोगों को सुनाएंगे, जिसे कृष्ण की भक्ति ने आप लोगों को दे दिया। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण की भक्ति और ये जो श्रद्धा उत्पन्न करा रहा हूं, किसी भी हालत में ये नष्ट न होने पाए, इसी को ध्यान ऐसे संपर्क सुखी और शांति नहीं होता। भगवान का भजन करने से सुखी और शांति सुख मिले, कुपुत्र हो जाए, उस समय आदमी कहते थे पुत्र नहीं हुआ था, या पुत्र होते ही मरते ही जन्मते ही मर जाता, तो उससे किसी भी दूसरी चीज से आदमी सुखी और शांति नहीं रह सकता है। भगवान के एकमात्र भजन करने से सभी सुखी और शांति ऐसे नहीं होते। तो बहुत समझाने पर नहीं समझे मुझे प्रभु, मैं पीछे जो कुछ होगा समझ लूंगा। आप हमको किसी प्रकार से एक पुत्र पैदा हो जाए, बस यही कृपा की। उन्होंने देखा कि कोई शुद्ध पुत्र है नहीं। मैं कहा कि तुम मानता नहीं है, तुम सुखी नहीं होगा भाई, कभी तुम नहीं मानता। तो देखो मैं तुमको यह फल देता हूं, अपनी रानी को जो तुम्हारी सबसे प्रिय हो उसको खिला देना, तुमसे हर्ष सुख पुत्र पैदा हो, हर्ष आनंद और शोक मने दुख, ये दोनों देने वाला तुमको पुत्र पैदा हो। अर्थात तो पुत्र तुमको पैदा हो उसे तुमको दुख भी होगा सुखी होगा। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये पुत्र होते हैं कभी कभी कुछ गड़बड़ करते हैं, क्या बात है, पुत्र तो होगा ही, किसी में बड़े खुश हो गए और लेकर के अपनी सबसे जो बड़ी रानी थी, सुंदरी थी, गुणी थी, पति के अनुसार में चलती थी, उसको उन्होंने ये फल दे दिया और अपने हाथों से इसे खिला दिया। ऋषि ने देखा, नारद ऋषि ने, या पर्वत से तो नारद जब देखा अंगिरा ऋषि, जैसे इसको पर्वत महाराज ऋषि देखा, जिसको पुत्र तो है नहीं, बस अपने शरीर को कहीं गुफा में रख दिया और अपनी आत्मा निकाल करके उसके माता के गर्भ में, उसके स्त्री के गर्भ में और खुद ही उसके पुत्र बन गए। ऐसे ऐसे सब देखे जाते, पहले लोग पर काय में दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, फिर निकल आते थे, ऐसी बहुत सी
संक्रमण।
किंतु अभी समय नहीं है, नहीं तो कथा नहीं होगी कुछ, इसलिए मैं उसके जीवन की गणित जाकर के मैं यही बतलाया। तो ठीक समय पर उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र होते ही बड़ी बधाई बजने लगी, राज्य भर में बड़ा आनंद बहुत कम होने लग गया, राजा तो एकदम खुल गया और लाखों गायों को दान किया और किस प्रकार से अपनी खुशी को बांटे, उसको जो सामने आया उस सबको दान किया। अब वो लड़का चांद की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगा और राजा अपनी स्त्री के प्रति, उस स्त्री और बच्चे के प्रति इतना आसक्त हो गया और रानियों को कुछ पूछे नहीं, रानियों से ये पुत्र हुआ न हमारा दुर्भाग्य उत्पन्न हुआ। पहले तो हम लोगों से जैसे तैसे कुछ पूछता था, जो कपड़े चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए और कुछ चाहिए, क्या तुम लोगों को कष्ट है सुख है, ये पूछता था, बात में बातचीत पूछता था। अब तो एक नौकरानी की भांति भी नहीं पूछता है, दिन रात उसी के पास में रहता है, बड़ी रानी के पास में, और कुछ पूछता ही नहीं, ये तो हम लोगों का दुख ही उत्पन्न हो गया। इधर में धीरे धीरे लड़का पढ़ने लग गया, होते 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 इतना सुंदर चांद की तरफ में मुखड़ा और इतना सुंदर लुभावना जिसको देखे या जो देखे वही मुग्ध हो जाए। धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, बड़ा होता गया तो और सुंदर होता गया। अब राजा अपना राजकाज भी छोड़ करके अब उसी के पास में दिन रात बैठा रहता है, राजकाज भी अब भूलने लग गया, कपट होने लगा। उस दिन में और बड़ा हुआ, रानी ने एक मीटिंग की, हमारे दुखों की जड़ यही बेटा है इसका, इसलिए हम लोगों से एक कुछ पूछता नहीं है, न देखता है, न सुनता है, न कुछ करता है, और दिन रात उसी के पास में बैठा रहता है। इसको हलाहल भी सीप में सिचुआ कोई होता है, सीप समुद्र में सीपें होती हैं, उसमें पूछ लिया और उसी में घोल दिया बीज और उसको खिला दिया। रानी पास में कहीं बैठी हुई थी कोई काम में और पलने पर अपने बच्चे को खिला दिया था। जब कुछ देर हो गई, जब बच्चा नहीं उठा न रोया, तो उसने अपनी दाई से कहा, जरा देखो बेटे को लिया, बहुत दिल से रोता नहीं है, चुपचाप सोया हुआ है, क्या बात है, इतना तो सोता नहीं था, बच्चे को जल्दी से ले आओ, हम उसे दूध पिलाएंगे, प्यार करेंगे। तो वो चली गई वहां, जब देखा तो बच्चा एकदम काला पड़ा हुआ है, उसमें सेंस नहीं मरा हुआ है। उसने अपनी छाती पीटना आरंभ किया, ये दैयारे में मरी, सब कुछ लूट गया है और वहीं पर हाय हाय कर रही है। रानी दौड़ती हुई वहां पर आई और देखा कि हमारा बेटा मरा हुआ है, वो छाती पीटती हुई वहीं पर एकदम उत्सुक होकर थी। राजा को खबर लगी, राजा एकदम दौड़ता हुआ अपने परिकरों के साथ में ब्राह्मणों के सिर पर हाथ रख कर कंधे पर, वो भी आया, उसको होश में देखा कि रानी पड़ी हुई है और बच्चे को बच्चे का पैर अपने गोदी में लिए हुए और वो मुट्ठी पड़ी हुई है, केश के बंधन खुल गए हैं, होश नहीं, कपड़े कहाँ हैं, सभी लोग घर के हाहाकार कर रहे हैं, सबसे वो स्त्रियां अधिक रो रही हैं, छाती पीट रहे हैं जिन्होंने बीत लिया था, जो और लोग समझ नहीं आया, ऐसे ही षड्यंत्र होता है और ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष होती है। वो जितनी थी हजारों एक साथ में जब रोने लगी और तुमुल शब्द हुआ, राजा आया दे करके और वही पछाड़ खा करके गिर गया। ऐसा शोक उमराज कोई किसी को समझाने वाला नहीं रह गया, कोई सांत्वना नहीं दे सका। उसी समय वही ऋषि, अब तो शरीर से निकल गए हैं ना बच्चे से, और उस अपने शरीर में प्रवेश करके और फिर उनके सामने आए, नारद जी को साथ ले आए, नारद जी और पर्वत ऋषि दोनों वहां पर आए, यहां गिर आए वहां पर उपस्थित हुए। बोलते ये क्या हुआ, किस लिए रोते हो? कोई जवाब न दे, सभी लोग रो रहे, वृद्ध से लेकर के लड़के तक, लड़कियां तक, स्त्री पुरुष सभी लोग। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो यहाँ है, ये कोई उत्तर नहीं देता, क्या हो गया? फिर बोले जी देखो, रोने का कारण है हमको कोई बतलाओ तो। राजा को बार बार जगाने लिया, भाई आप बोलिए किस लिए रो रहे हैं? उन्होंने इशारे से देखा कि हमारा बेटा यहाँ पर पड़ा मर गया है, और फिर ये सभी रानी ऐसे बेहोश होकर के रो रही है और सभी लोग रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं बेटे के, हमारा इतना दुर्भाग्य, ये इतना बड़ा चांद साल लड़का, इतना सुंदर सुकांत, और हमारा कुल का एकमात्र आँख, और ये मर गए। तो कभी ऋषि की बात याद नहीं है। इन्हें पूछा कि आप सब लोग रो रहे हैं, सब लोग, और भी मैं आदमी को बुला लाऊं, सभी लोग मिलकर के रोएंगे तो ये तो जीत जाएगा ना? आप ये नहीं, न रोएगा, न बचेगा, आप जीवित नहीं लौटेगा। कहाँ चला गया? कहीं गया नहीं, यही सो रहा है, तो सोचाओ, इसी को तो तुमने पुत्र कहा था, यही तुम्हारा पुत्र, इसका लालन पालन करती थी और करते थे, और तेल लगाते थे, और तन लगाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, प्यार करते थे, ये तो पड़ा हुआ है, कहीं तो नहीं गया? तो नहीं, इसके अंदर में जो आत्मा थी वो चली गई, आत्मा चली गई, आत्मा चली है तो जाने दो, तुम्हारा बेटा तो है।
अरे जब आत्मा ही नहीं है तो ये इसका मूल्य क्या है? अरे इसी को तो तुमने पुत्र कहा। जो आत्मा चली गई, गोरी थी कि काली थी, सांवली थी, कितना लंबा कितना चौड़ा मोटा पतला था वो, तो उसको कभी देखा नहीं, तो रोने की क्या जरूरत है इसके लिए जब देखा ही नहीं? तुमको मैंने बतलाया था तुम्हारा हर्ष और सुख प्रद पुत्र होगा। तो आनंद हुआ जब जन्म लिया तो, अब यह दिया तो यह सुख प्रद है, क्यों रोते हो? अच्छा जन्म के पहले ये तुम्हारा क्या लगता था? और तो कुछ नहीं, कोई बेटा ही नहीं जीता हुआ, उसका क्या लगेगा? शादी से पहले पति क्या लगता है, स्त्री क्या लगती है? कोई संबंध नहीं। मरने के बाद भी क्या संबंध रहता है? मट्टी में मट्टी मिल गई, किस लिए रो रहे? और उसके अंदर में जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं मरते। एक व्यक्ति ने फटे हुए कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा पहन लिया तो इसमें रोने की क्या बात है? उस आत्मा ने जो सड़ा हुआ शरीर था उसको छोड़ दिया और नया शरीर पहन लिया, इसमें रोने की तो बात नहीं है कुछ। और भी बहुत तरह की बातें समझाई उन लोगों को, कुछ बुद्धि आई। और मुझे क्या करना चाहिए? मैं मंत्र तुमको देता हूं, ये संसार ही ऐसा है, सबको जाना पड़ेगा। आज भी जन्म है, कल बुरा होगा, परसों मरेगा। इसलिए इस जीवन में रहते ही आत्मा को खोज करके मैं क्या हूं, उसकी क्या जरूरत है? कल या परसों शाम को यहीं के कोई अच्छे पढ़े लिखे एक व्यक्ति हमारे पास में आए, उन्होंने कहा मैं जो काम करता हूं वो सभी काम में मैं असफल हो जाता हूं, कोई काम आरंभ किया उसमें असफल हो जाता हूं, मैं बहुत दुखी रहता हूं। आप कोई मुझको कुछ बहुत दुख जाने लोग सोचा ये साधु संत है, कोई साबिश दे देंगे, गले में कुछ दे देंगे, मंत्र का देंगे, बेटा जाओ तुमको ऐसा होगा। हमने कहा जो मैं तांत्रिक, वो चंद्रा या कोई तांत्रिक है ना, ऐसे सब तांत्रिक हम लोग नहीं, हम लोग इस जीवन पर विशेष रूप से विचार करके कदम का निकाले। लोगों को ठकने वाले हम लोग ज्योतिषी और वो नहीं, तांत्रिक नहीं है, तब हम सब लोगों का उपकार करते हैं। अच्छा आप एक बात लाइए, आप खाते हैं किस लिए? तो विचार से बतलाया, जीवन के को धारण करने के लिए, बचने के लिए। नहीं खाएंगे तो क्या होगा? दो चार दिन, दस दिन के बाद में, 50 दिन के बाद में मर जाएंगे। तो आप, मैंने पूछा जैसा आप ये बतला सकते हैं, ये आप जीवन धारण किस लिए करना चाहते हैं, किस लिए बचना चाहते हैं? खाते हैं बचने के लिए, किंतु बचने किस लिए चाहते हैं? जीवन धारण करने का लक्ष्य क्या है? सब तो चुप रह गए, ये तो मैं नहीं जानता। ऐसे ही सब लोगों का है। एक कुत्ता है, बड़े वेग से चलता है और हाफ किलोमीटर पर या कुछ थोड़ी सी दूरी पर गया और ठहर गया, थोड़ा सा पैर उठा दिया, थोड़ा सा पेशाब कर दिया, अब फिर वहां से चल बड़े वेग से, कहां जा रहे हैं बोलने की फुर्सत नहीं, तब अफसोस चला जा रहा है, कहां जा रहे हैं? कोई डिस्टिनेशन नहीं है, there is no aim and object of his life। कहां जा रहे हैं? फिर वहां से लौटा, बड़ी तेजी के साथ लौटा और फिर खटक गया, फिर वहां से दिशा बदल दिया, अब इधर चला। कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कुछ पता नहीं, जाना है जा रहे हैं, खाना है खा रहे हैं, सोना है सो रहे हैं, किस लिए? जीवन का कुछ लक्ष्य तो चाहिए, कमा रहे हैं खाने के लिए, खा रहे हैं जीवित रहने के लिए, जीवित किस लिए रहना चाहते हो? ये प्रश्न को जरा सोचो तो, और सोच कर हमें बताओ किस लिए। और सभी जानते हैं कि यह शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ, और यहाँ का ये कोई धागा भी नहीं जाएगा, तब फिर जीवन के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका कुछ लक्ष्य नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये दिन आपका जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, आपका जीवन सुखी और शांति हो जाएगा। हम लोगों ने जीवन का लक्ष्य बना लिया इसलिए सुखी है। आज मृत्यु अभी आ जाए, हम आलिंगन करने के लिए तैयार हैं, कोई भी दुख एक क्षण के लिए। आप लोगों का कोई लक्ष्य नहीं, इस लक्ष्य को बनाना है, ये भागवत अभी जो उपाख्यान बतला रहा हूं उसका लक्ष्य यही है। बेटे से सुख नहीं होगा, बेटी से सुख नहीं होगा, विवाह से सुख नहीं होगा, समस्त विश्व की संपत्ति आने पर भी सुख नहीं रहेगा। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती कोई एक है, उनको राज तिलक दिया गया, कितना सुंदर थक 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 दिन रात कांपती रहती। अभी कल भोट हमको यदि कम मिल जाए और फिर न हो तो, और उनके पहले कौन नजर थे, मुलायम सिंह ना कठोर सिंह थे, पाया का एक कुर्सी का एक पाया जरा हट गया इधर और चेयर ही उनके ऊपर में गिर पड़ी। यही तो जीवन है, इसी के लिए मर मिट रहे हैं, जी रहे हैं, सुखी और दुखी हो रहे हैं। असल में जीवात्मा जो है ये इसका क्या हुआ, जब तक हम भगवान को नहीं पाएंगे हम सुखी और शांति नहीं रहते। ये नारदी और अंगिराज की उनको समझाना चाहते हैं। अंत में उन्होंने कुछ शब्द जब समझा, रियलिटी इसकी, शरीर की भूख हमारी मर रही, खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, 500 रुपए का डीश भी मिल जाता है, चले जाइए यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा होटल है ना, या दिल्ली में ग्रैंड होटल या कौन कौन से होटल सब बन गए हैं, हजार हजार रुपए की थाल, तरह तरह की मछली, अंडे, यहाँ तक कि बत्तख के बच्चे अंडे से जो निकलते हैं ना उसको चीर करके नमक और मिर्च लगा करके आपको दे। किसी को नहीं जाने क्या मानते हैं, कबाब ना क्या कहते हैं, यही जीवन का विचार बस। किंतु जीवन क्या चीज है इस पर नहीं विचारते, उनका भी तो जीवन है ना कि नहीं है, नहीं विचारते, उनकी भी ऐसी ही दुर्गति होगी। इसलिए हमें जीवन को समझना चाहिए। उन्होंने उनको मंत्र दिया, अब रानिया जिन्होंने बीच दिया था वो आकर के रोने लगी, बोले नहीं सचमुच महाराज हमने नहीं बीच दिया, उस समय हमने नहीं समझा, अब हम समझ रहे हैं कि सब दुखों की जड़ हम हैं, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम लोग भी भगवान का भजन करो, उनको भी मंत्र, ये महाराज के प्रकेतु भजन करते 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 उन्होंने आत्मा की और भगवान की अनुभूति मिली। भगवान इनके सामने एकदम प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनकी आत्मा इस शरीर से निकल करके चिन्मय होकर के सर्वत्र यहाँ पर स्वर्ग में वैकुंठ में सर्वत्र वो उनकी विचरण करने लगी, वो प्यास इत्यादि सब अब रही नहीं, कोई कष्ट नहीं रहा। एक समय की बात है वो आकाश मार्ग से विचरण करते करते कैलाश में आए, कैलाश में जो शंकर हैं उनके गुरु भाई हैं, वो भी राम के उपासक हैं, ये भी राम के उपासक, कौन से राम, शंकरसन राम जो बलदेव प्रभु जी हैं उनका भी राम राम कृष्ण के भैया बलराम जी उनके उपासक, दोनों के गुरु हैं। इसलिए अपने गुरु भाई से बहुत दिनों के बाद में मिलने आए, जब कैलाश में उतरे तो देखा कि देवताओं की और ऋषियों महर्षियों की बड़ी भारी एक विशाल धर्म सभा हो रही है और उसमें कुछ धर्म तत्व के पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, कुछ भगवान की कथाओं का समन किया जा रहा है, शंकर जी उस हरी कथा को कह रहे हैं और पार्वती जी श्रृंगार किए हुए उनकी गोदी में बैठे, शंकर जी तो नंगे हैं, सांपों के मृगशाला पहने हुए हैं या व्याघ्रशाला, और सांपों की मणिबंधन, सांपों की हिमाला, सांपों की ही पैरों में नुपुर या ये सब कुछ, कमर में भी सांपों की ही के आभूषण, कानों में भी छोटे छोटे पतले सांप झूल रहे हैं, अद्भुत चरित्र और भगवान की कथा कह रहे हैं। इतने में वो आए, देखा कि सभा में बड़े बड़े ब्रह्मस्त्र इत्यादि सब, शिव जी ने उनको अपने इशारे से उनको पास में बुलाया, ये पास में बैठे, तब ये हंस करके कहने लगे शंकर जी से वहां बड़ी विचित्र सभा हो रही है, कितने ब्रह्मस्त्र लोग इसको सुन रहे हैं और आप इनको भगवान की कथा सुन रहे, ये तो कुछ ख्याल है, ये लोग देखेंगे जब पार्वती को गोदी में लेकर के खुद वैराग्य परम धारण करके
सांपों की माला और ये सब लगा करके भस्म लगा करके नंगे शंकर जी बैठे हैं और पार्वती जी को अपने गोदी में बैठे हैं, उनकी गलबगियां दे रखी है। तो ये लोग क्या सोचेंगे, ये तो ठीक नहीं किया। शंकर जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा करके रह गए, क्योंकि गुरु भाई है ना, उनका अधिकार है ऐसा का। शंकर जी को जानते हैं, वो जगत से अतीत है, भगवान के परम भक्त हैं और संसार से मुक्त है, माया उन पर कुछ भी नहीं कर सकती, काम उनके हृदय में आ नहीं सकता, काम जो को तो पहले ही जला रखा है। फिर भी लोगों को सावधान करने के लिए ऐसे उनसे कहे, पार्वती जी के आंख लाल लाल हो गए, हमारे पति और हमारा इतना अपमान, इनको शिक्षा देने के लिए ब्रह्मा जी बैठे हैं और सनत सनंदन सनातन जैसे ऋषि लोग बैठे हैं, बड़े बड़े प्राचीन ऋषि लोग बैठे हैं, इन लोगों ने इनको कोई उपदेश नहीं दिया, ये चित्रकेतु का न जाने कहां से आकर के और इनको उपदेश देने लगा, आज का अभी जन्म नहीं हुआ वो बिगड़ गई, लेकिन तू बड़ा अभिमानी हो गया, महापुरुषों की सभा में ऐसी दंडता नहीं करनी चाहिए, तुम सीखो और कह करके उनको अभी संपाद दे दिया, जाओ तुम अभी असुर होकर के जन्म ग्रहण करो। ये ब्राह्मणों को, विद्वानों को, आत्म तत्व को जानने वाले लोगों के लिए ये शोभा नहीं आता, ये राक्षसों के लिए ही, असुरों के लिए ही ऐसा होता, ले जाओ असुर हो जाओ। मुस्कुराने लगे महाराज चित्र के लिए, मुस्कुराता है एवं मस्तु ऐसा ही हो। अब शंकर जी से नहीं रहा, मैं अपनी स्त्री को डांटते हुए पार्वती जी को कहा, सुश्रोणी अरे बड़ी सुंदरी, अपने सौंदर्य पर तुमको अभिमान है, अरे ये मेरा गुरु भाई है, इसको ऐसा कहने का अधिकार है, देखो तो तुमने इसको अभी संपात किया, ऐसे यदि चाहता तो कहता कि तुम्हारा अभी संपात नहीं है, तुम्ही को लग जाए तो तुम्ही को लग जाए, अथवा ये अलग से तुमको यदि कुछ कहा जाए तुम ही मर जाओ, तुम अभी जल मरो, तो जल मरती, उन्होंने कुछ भी अभी संपात नहीं किया और हंसते हंसते उसको अपने सिर में धारण कर दिया। देखो तो ये महा भगवान के भक्तों का ये महा कितना ये गुण है, प्रभाव कितना है, अहो अंत दासा नाम
प्रभाव,
आज प्रभाव कितना बड़ा है, देखो तो इनको तनिक भी रंज नहीं हुआ, तनिक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, हंसते हुए तुम्हारे अपराध को ले लिया, तुम्हारे दंड को उन्होंने ग्रहण कर दिया और तुमको इसके बदले में कोई अभी संपात नहीं दिया, भला बुरा भी नहीं कहा, डांटा तक भी नहीं, ये लोग महान, तुमने ये गलती किया, तुमने विचार नहीं किया, और कहते ही क्या, फिर मौन हो गए, बड़े दुखी हो गए, किंतु उनका कहते कि स्वर्ग में और नरक में भक्तों को कोई भी भेद नहीं होता, अभी आप किसी को निमंत्रण कीजिए, दो मित्रों को, और एक को खाली में रसगुल्ला दीजिए, एक को मत दीजिए, तो ये क्या होगा, ये कहाँ तक रंग लाएगा, उस समय तो वो नहीं कहेगा देखो तो ये हमारे पत्ते में रसगुल्ला नहीं दिया और इनको दिया, एक रसगुल्ले के देने में ही ये प्रीति और ये अप्रीति और ये बुरा और फलाका। महिलाओं में तो थोड़ा सा कहीं कुछ हो गया उसी में हितंडा होकर के नहीं, कहाँ तक मामला बढ़ जाता है, और फिर दो दिन के बाद में फिर बड़ा मोहब्बत हो गया। तो उनको सही थी, नरक में रहे स्वर्ग में रहे वो ये कहते हैं, हम जहां भी रहे भगवत भक्तों का संग हो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, वही शरीर छोड़ करके और बन गए पितासुर। पितासुर कौन है, अभी तक थोड़ा सा परिचय, ये एक ऋषि थे, देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ, कभी देवताओं ने उन दानवों को हरा दिया असुरों को, और असुरों ने हरा दिया उनको, कभी विरोचन और बलि ने इंद्र को हरा दिया, कभी इंद्र ने उनको हरा दिया, जब तक वो सत पथ पर हैं, भगवान का आदर करते हैं, संतों का आदर करते हैं, गुरु जी का आदर करते हैं, तब तक उनकी जीत हो, आज जहां गुरु जी का थोड़ा सा भी अनादर हुआ या भगवान का अनादर हुआ सत्पुरुषों का अनादर हुआ, महत्पुरुषों का उसको खाना हो जाता। इंद्र जी असुरों को जय किया युद्ध में, पराजित किया और एक बड़ी भारी सभा हुई और उस सभा में सभी देवता लोग जुट करके और इंद्र को अभिवादन कर रहे हैं। बड़े बड़े फूलों की माला उनके गले में दी जा रही थी और कहें कि आप ही ने इस युद्ध को जीता। थोड़ी देर में ऐसे ही चल रहा था खूब उत्सव, इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आए। इंद्र ने देखा, देख करके भी नहीं देखा, सब लोग अभी हमको सम्मान दे रहे हैं, जय जय हमारा बोल रहे हैं और हमारा भी अभिषेक हो रहा है, यदि गुरु जी आएंगे तो मैं उनको अपना संग छोड़ा पड़ेगा और मुझे उनको ही को प्रणाम करना पड़ेगा, सबका ध्यान हमारे तरफ से हट करके गुरु जी पर चला जाएगा, हमारा सम्मान कोई करेगा। इसलिए जान पूछ करके सोचा कि नहीं आते इस सभा में तो ही अच्छा था, इसलिए उनके तरफ में देख करके भी नहीं देखा और अपनी नजर इधर कर ली। गुरु जी समझ गए ये नहीं चाहता कि यहाँ पर इस समय सोचा जी इसका अब कुछ अमंगल होने वाला है, ऐसा सोच करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद में उसी सभा अभी हो रही, इतने में असुरों को पता चला और बृहस्पति उनको शुक्राचार्य से पूछ करके उन्होंने काफी समय है उन्होंने गुरु को अनादर किया है और उनके गुरु जी हैं भगवत भक्त हैं, इस समय आक्रमण करो। बस उसी समय सभा में ही आक्रमण किया और समस्त देवताओं को मार पीट करके उनका राज्य ले लिया और इंद्र को वहां से चला दिया, सारे स्वर को अपने आप ही। अब इंद्र बड़े दुखी थे, वो अपने माता पिता के पास में कश्यप और अर्जुन के पास में गए, रोने लगे। वो फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, समय आएगा सब ठीक होगा। उसी समय में उन्होंने परामर्श दिया जिस समय तब बृहस्पति जी नहीं है, तुम एक यज्ञ करो और एक मंत्र पढ़ करके आहुति दो, जिस बृहस्पति तो नहीं है एक ऋषि है उनके लड़के इस विषय को जानते हैं, उनको अपना गुरु बनाओ। वो लोग ऋषि को कह करके और उसके पुत्र को लेकर के यज्ञ करने लगे और मंत्र से आहुति दे। उसमें आहुति ये थी कि वो जो यज्ञ करा था उसके माता तो थी असुर कुल की और पिता थे देव कुल के, इसलिए वो चाहता था कि मेरी माता के पक्ष की भी जय पराजय न हो और उनकी भी पराजय न हो। इसलिए ऊपर से इंद्र के कहने से इंद्र की तरफ से और वो आहुति दिलवाता था और कभी कभी चुपके चुपके आपकी मामा लोगों की तरफ में कभी उनके नाम से आहुति दे। उसमें आहुति का ये था
इंद्रशत्रो
विभद्भस्व। संस्कृत में ऐसा होता है कि उच्चारण में यदि गड़बड़ हो जाए ना तो उल्टा फल हो जाता है मंत्र। यज्ञ में यदि उल्टा यदि मंत्र कोई कर दे, एक हस्व होता है उच्चारण, एक दीर्घ होता है, एक प्लूत होता है। आजकल करके जो नए नए ठोकरे साहित्यकार हैं, हर्षई दीर्घई प्लूत इत्यादि का कोई विचार नहीं। ये दो तरह की हर्षई क्यों विकार क्यों है, उकार दो कतार का क्या है, सब एक ही होना चाहिए। दीर्घ का कोई जरूरत नहीं है, जो कोई भी लिख दिया यही हो गया और संयुक्त जो होते हैं अक्षर उसको भी निकाल दिया। धीरे 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 साहित्य इतना नीचे चला जा रहा है। तो उन्होंने उच्चारण किया इंद्र शत्रो, इंद्र पर जोर दिया भी इंद्र शत्रो, शत्रो को जरा हल्के तौर से दिया। तो यहां पर हो गया क्या, इंद्र ही बढ़े और यदि वो कहते इंद्र को छोटे कर करके शत्रु को लंबा कर इंद्र शत्रो विवर्धक, तो इंद्र का शत्रु पैदा, इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाता।
इसी स्वर के गड़बड़ी से उन्होंने इंद्र पर जोर देकर के शत्रु को उच्चारण हल्के स्वर से किया। ऐसा फल यह हुआ कि जो इंद्र है उन्हीं का पक्ष वर्धित हो और वही बढ़े, इंद्र ही बढ़े। और
इंद्र जिसको मारेगा
इंद्र ही जिसको वध करेगा वही इंद्र ही शत्रु है जिसका वो बढ़े, ये अर्थ हो गया। समास में ऐसा हो जाता है। तो यह फलवा कि इंद्र को अपने शत्रु को वर्धन करने वाले ही उसका एक शत्रु तो पैदा हुआ, ये महाविकराल राक्षस, किंतु इंद्र ही उसका वध करेंगे ऐसा उसका अर्थ हो गया। महाभयानक राक्षस हुआ उसका नाम स्वादृष्टासुर। वो असुरों की सेना लेकर के स्वयं सेनापति बनकर और देवताओं पर चढ़ाई, महाभयानक युद्ध हुआ। उस महान भयानक युद्ध में इंद्र ने देखा जैसे मैं कोई चहार रहा हूं बार बार, तो वो मैदान से भाग करके और चले गए महात्मा दधीचि जी के पास। महाराज मैं क्या करूं, ब्रह्मा जी से पूछो जो क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा दधीचि ऋषि का हार यदि जीवित मिल जाए तो लिया उसे वज्र बनेगा उसी से वो मरेगा। तो ब्रह्मा का निश्चय ठीक दधीचि के पास मिल गया, बड़ी उनकी प्रशंसा थी। क्या चाहते हो, हंसने लगे।